மங்களம் கோத்து மோகணி, மங்களம் குந்த குந்தாரியோ, ஜெயின தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாணி காரிகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயனம் ஜெயது சாசனம், ஜெயனம் ஜெயது சாசனம். நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்யா சகாசிதி சிஸ்வபாவாய பாவாய சர்வபாவாந்தரச்சிதே. ஸ்ரீமத் ராஜச்சந்திர வச்சனாமிரத் பத்ராங்க 128 பர் ஹமாரி சர்ச்சா சல் ரஹி தி. பஹுத் வைராக்ய ஓர் பிரேரணாஸ்பத் வச்சனாமிரத் ஹை. காஃபி விசார் கே பிந்து அப்பன் லோகோ கே லியே இஸ்மே தியே ஹை உன்னோனே. देखो, कल यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी कि अंतर ज्ञान से स्मरण करते हुए ऐसा कोई काल, ऐसा कोई समय ख्याल में नहीं आता है कि जिस काल में जीव ने परिभ्रमण नहीं किया हो, यानी परिभ्रमण से बात को उठाया. क्यों? क्योंकि जब तक जीव को परिभ्रमण का भय नहीं है, जब तक जीव को संसार परिभ्रमण का भय नहीं है, तब तक ये जिनवाणी परिणमित होने वाली नहीं है. अपन लोगों का एक प्रश्न रहता है कि हम इतना सुनते हैं, इतना सब कुछ धर्म के नाम पर करते हैं, इसके बाद भी फल क्यों नहीं आता? तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि मूल बात में है कि सबसे पहले हमें अपने परिभ्रमण की चिंता नहीं है. किस भाव से मेरा भव बढ़ेगा और कौन सा भाव मेरे भव के अभाव का कारण है? क्या भव में परिभ्रमण करना ही मेरा एकमात्र जीवन है? इस तरह जब तक परिभ्रमण की चिंता नहीं खड़ी हो जीव को कि अगर मैं यहां चूक गया, इस अवसर में यदि मैंने पुरुषार्थ नहीं किया. अभी माताजी की चर्चा में एक बहुत अच्छी बात आई थी कि सम्यक दर्शन के पहले भी पुरुषार्थ होता है और सम्यक दर्शन के बाद भी पुरुषार्थ होता है. सम्यक दर्शन के पहले स्वरूप को पाने का पुरुषार्थ होता है और सम्यक दर्शन के बाद स्वरूप में ही स्थिर हो जाने का पुरुषार्थ होता है. लेकिन यह पुरुषार्थ कब होता है? कि जब जीव को संसार परिभ्रमण की चिंता लगी हो और ऐसा लगे कि यदि मैं इस अवसर को चूक गया तो इस अनंत संसार के परिभ्रमण के चक्र में कहां जाकर के पड़ूंगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है. त्रस पर्याय की स्थिति तो बहुत मर्यादित काल की है. मर्यादित काल यानी अनंत काल के सामने 2000 सागर की स्थिति कोई मायने नहीं रखती है. और उसमें भी यह अनिवार्य नहीं कि 2000 सागर की हमने स्थिति मिली है त्रस पर्याय के लिए तो 2000 सागर इसमें रहेंगे ही. यदि मिथ्यात्व की तीव्रता हो गई, यदि कसायों की तीव्रता हो गई मिथ्यात्व सहित, तो 2000 सागर के पहले भी अपना नंबर वापस जहां से अपन लोग आए हैं, गुरुदेव श्री बोलते थे पीहर से आए हैं ना, पीहर में ही वापस पहुंच जाने वाले हैं, ये समझ लेना. गुरुदेव निगोद को पीहर बोलते थे. ये कोई मैंने ऐसी बात नहीं है कि जैसा होता है ना अपन लोग सब सच में, तो मैं तो ऐसा बोलता हूं कभी कभी, मैंने कहा अपन सब लोग जमानत पर छूटे हुए लोग हैं. जमानत पर? कैसे जमानत पर? कि जैसे कोई अपराध किया और अपराध में सजा हो गई और फिर भी अपन ने जमानत की और अपनी जमानत अर्जी मंजूर हो गई कि चलो ठीक है, तुम सुधरने का एक चांस अपने को दिया. तो जमानत की जमानत पर छूट गए तो वापस जेल नहीं जाएंगे, इस बात की तो गारंटी नहीं है. क्योंकि जमानत पर छूटे और जोश जोश में आकर के जिस जेलर ने छोड़ा उसी को पत्थर मार दिया तो फिर क्या होगा? आ गया ना. तो जिस देखो कसाई की मंदता में निगोद से अपन त्रस्त पर्याय में तो आ गए, लेकिन उस कसाई की मंदता में धर्म मान के बैठ गए, है ना, अथवा उस कसाई की मंदता में जो फल प्राप्त हुए संसार के, है ना, तो ये जो संसार के फल प्राप्त हुए उसमें इतने रचपच गए। कल एक बहुत अच्छे कारण की चर्चा उनने की थी, स्वच्छंदता। स्वच्छंदता का मतलब क्या है? कल मैंने एक बिंदु पर चर्चा की थी स्वच्छंदता के, एक और बिंदु भी है स्वच्छंदता का। स्वच्छंदता का दूसरा बिंदु क्या है कि अपन लोग स्वच्छंदता में इतनी वृद्धि में आ जाते हैं, स्वच्छंद पापाचरण एक, और ज्ञानी के मार्ग से विमुख होकर अपने अभिप्राय की मुख्यता, ये दो बिंदु हैं। कि अपन लोग क्या करते हैं कि जब स्वच्छंदता के में आते हैं ना, तो तीव्र रस बुद्धि से, देखो विषय कसाई का सेवन ज्ञानी को भी होता है, ऐसा नहीं होता है कि ज्ञानी चक्रवर्ती होते हैं तो कितने विषय कसाई के साधन उनके पास उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनमें कहीं रस बुद्धि नहीं होती। जैन दर्शन सबसे पहले रस बुद्धि का त्याग कराता है। जहां रस बुद्धि गई तो वहां पर बाह्य के साधन होने पर भी उसको स्वच्छंदता नहीं कहा जा सकता, और रस बुद्धि से उनका सेवन करें तो एक स्वच्छंदता का यह प्रकार है। और दूसरा प्रकार जो कल चर्चा करी थी कि ज्ञानी के अभिप्राय के सामने अपने अभिप्राय को मुख्य करना, अरे भाई अपने को जन्म मरण का अभाव करना है। सबसे बड़ी समस्या क्या है अपनी? जन्म मरण के अभाव की। और एक जन्म मरण के अभाव की समस्या नहीं है। देखो जब अपने को कोई भयंकर व्याधि हो जाए, और ऐसी व्याधि हो जाए कि वो अपने प्राणों का अंत लेकर के ही रहेगी ऐसा अपने को लगे, तो वो प्राणों का, अगर वो व्याधि प्राणों का अंत लेगी तो कितनी बार प्राणों का अंत लेगी वो व्याधि? एक बार, माने एक भव वो हर सकती है। तो जब एक भव का हरण करने वाली व्याधि अपने को आ जावे तो अपने को उस व्याधि के मिटाने के लिए कितनी गंभीरता आती है। और डॉक्टर से हम ये कहते हैं कि साहब आपने जो बताया वो हमारे लिए लक्ष्मण रेखा होगी, हम आपसे विरुद्ध एक क्षण भी नहीं चलेंगे। जब एक जन्म का जन्म मरण, एक जन्म का मरण मिटाने के लिए, मतलब इस भव का मरण टालने के लिए हम इतनी गंभीरता में आ जाते हैं, और वो भी उस डॉक्टर की बात पर कि जिस डॉक्टर को ना तो सत्य अनुव्रत है और ना तो सत्य महाव्रत है, कि उसने कह दिया कि तुम ये करोगे तो तुम्हारी व्याधि नियम से मिटेगी और तुम निरोगी हो ही जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नहीं ना, गुरुदेव बोलते थे ना डॉक्टर पण मरी जाए छे, हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं। और ये जो ज्ञानियों ने मार्ग बताया कि देखो एक तो ये ज्ञानी जो अपने को जन्म मरण के अभाव का मार्ग बता रहे हैं, जो अपने को ये कह रहे हैं कि एक बार तू अपने परिभ्रमण की चिंतना तो ला, तो ये उस मार्ग पर खुद चले हैं और उस मार्ग पर चल करके ये ज्ञानी यहां तक पहुंचे हैं। आज जन्म मरण के अभाव की कला इन्होंने प्राप्त की है और प्राप्त करके ये मार्ग को अपने को बता रहे हैं। दूसरी बात कि इस मार्ग पर चलने में, इस मार्ग पर चलने में ज्ञानियों के द्वारा बताए गए मार्ग पर ज्ञानियों का आज्ञानुवर्ती होकर चलने में एक मरण नहीं टलने वाला, लेकिन अनंत जन्म मरण की समस्या का अंत आने वाला है। अर्थात हम अनंत काल तक के लिए अब कभी जन्म मरण के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी अतिंद्रिय आनंद की दशा अपन लोगों को प्रकट होने वाली है कि जिस दशा के आनंद को भोगते हुए हम कभी भी थकान नहीं महसूस करेंगे। अनंत जन्म मरण का चक्र मिटेगा, और यह बात शत प्रतिशत गारंटी की बात है कि इस मार्ग पर चलने पर अवश्य ही जन्म मरण के अभाव का मार्ग हाथ आएगा और वो मार्ग प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये जिन्होंने जन्म मरण का अभाव किया है, जिन्होंने भावों का अभाव किया है, उन ज्ञानियों की वाणी है, और ये वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती। पहले तो हमें उस ज्ञानी पर, उन धर्मात्माओं पर, उन मार्गदृष्टाओं पर इतना अपने को भरोसा आना चाहिए, है ना, और भरोसा आने के बाद कि ये मेरे वास्तव में मेरे मुक्ति विधाता हैं, इन्होंने मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया है और इन्होंने जो मार्ग हमको प्रदर्शित किया है, दर्शाया है, सच में वो मार्ग मेरे जन्म मरण के अंत का मार्ग है, तो ऐसा करके उस मार्ग पर अपन लोग गमन करें। तो ये बात हो गई थी। अब इसके बाद देखो एक बहुत अच्छा पैरा इसके बाद इसमें आया है, बहुत ही गजब का है। देखो यहां पे क्या कहते हैं, यहां तो हो गया था कि और स्मरण होता है कि यह परिभ्रमण केवल स्वच्छंद से करते हुए जीव को उदासीनता क्यों न आई, अर्थात क्यों न आई, ये विचार करने के प्रश्न मार्ग डाला है ना, तो प्रश्न मार्ग डाला इसका मतलब क्या कि अपने को विचार करना चाहिए, अरे अब तो तेरे को उदासीनता आनी चाहिए इससे, परिभ्रमण करते हुए अभी तक परिभ्रमण से उदासीनता नहीं, अभी भी उन्हीं कारणों का सेवन करता जा रहा है कि जो कारण परिभ्रमण के कारण है, जिससे संसार के अभाव का मार्ग नहीं मिलेगा। वचनामृत में एक बोल आता है, भाव भ्रमण में जीवन व्यतीत हो, ऐसे भाव में जीवन व्यतीत करना योग्य नहीं है कि जिससे भाव भ्रमण चालू रहे, है ना, ये यहां पे कह रहे हैं। दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, अब देखो अब ये जो चर्चा मैंने छोड़ी थी यहां से कि दूसरे जीवों के प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए या अन्यथा करते हुए यह बुरा है, ऐसा यथा योग्य क्यों न जाना। देखो दूसरे जीवों के प्रति क्रोध, मान, माया, लोभ या अन्यथा प्रकार की प्रवृत्ति ये क्यों होती है, पहले इसकी मूल में जाएं अपन। सामान्य रूप से तो ये उपदेश अपने को मिलेगा, किसी के प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति मान नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए, ये उपदेश तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक उन कारणों पर प्रहार नहीं किया जाए कि जिन कारणों की वजह से ये क्रोध, मान, माया, लोभ पैदा होते हैं अन्य के प्रति, तब तक बाहर से अपन लोग कदाचित कषाय की मंदता करके बच भी जाएं, लेकिन अभिप्राय में क्रोध, मान, माया, लोभ के परिणाम बने रहेंगे। देखो किसी भी जीव के प्रति अपने को क्रोध क्यों आता है, किसी भी जीव के प्रति अपने को मान का परिणाम क्यों आता है कि वो छोटा और मैं बड़ा, ये मान का परिणाम। इसी तरह ए और भी कषाय लेना, कहा इसमें सबसे मूल में है पर्याय बुद्धि। क्या मतलब कि जैसे हम अपने को पर्याय बुद्धि से देखते हैं और सारे जगत के जीवों को भी अपन पर्याय बुद्धि से देखते हैं, तो जब उनको हम पर्याय बुद्धि से देखेंगे तो उनके प्रति क्रोध भी आएगा, उनके प्रति मान का परिणाम भी होगा और भी प्रकार के परिणाम होंगे। और यदि हम अपने को भी द्रव्य दृष्टि से देखें कि मैं तो एक चिदानंद परमात्मा हूं और जगत के सारे जगत के जीव हमको चिदानंद परमात्मा दिखाई दें, तो एक परमात्मा को दूसरे परमात्मा के प्रति कैसा भाव आएगा, क्रोध का परिणाम आएगा, मान का परिणाम आएगा कि तू छोटा परमात्मा, मैं बड़ा परमात्मा, ऐसा भाव आएगा। अरे द्रव्य दृष्टि से अगर हम देखेंगे, है ना, वचनामृत में बोले ना, हम तो सबको सिद्ध समान ही देख रहे हैं, हम तो सबको पवित्र ही, ऐसा आया कि नहीं, चैतन्य ही देख रहे हैं, वे अपने को कैसा भी माने उनकी वो जाने, लेकिन अपनी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, दूसरे के प्रति क्रोध नहीं आवे। तो क्रोध क्यों आता है, मैंने कोई भी कसाय क्यों उत्पन्न होती है, पहले इस कारण का विचार करो। तो कसाय इसलिए उत्पन्न होती है कि जब हम किसी भी पर पदार्थ को इष्ट अथवा अनिष्ट मानते हैं, अच्छा अथवा बुरा मानते हैं, भला अथवा बुरा मानते हैं, तो अपने को कसाय उत्पन्न होती है। और तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब कोई भी पर पदार्थ ना तो अपने को अच्छा भासित हो और ना तो अपने को बुरा भासित हो, कैसा भासित हो, जब अच्छा भी भासित नहीं हो और बुरा भी भासित नहीं हो तो कैसा भासित हो, कि जैसा वो है वैसा भासित हो, क्योंकि अच्छा और बुरा जगत में कोई पदार्थ है ही नहीं, जगत में जो भी पदार्थ है, जगत में जो भी वस्तु है कि वो अपने स्वभाव को लिए हुए है, और किसी भी पदार्थ का स्वभाव वो स्वभाव होता है, उसमें अच्छे और बुरे का भेद करना एक ज्ञान का कार्य नहीं है। ज्ञान कभी भी पदार्थ में अच्छे और बुरे का भेद नहीं करता। पदार्थ में अच्छे और बुरे का भेद कौन करता है? कि पदार्थ में अच्छे बुरे का भेद करना ये मोह का काम है और ये कसाई का काम है, है ना। तो सबसे पहले तत्व ज्ञान का अभ्यास माने प्रत्येक पदार्थ को द्रव्य स्वभाव से देखने की नजर डालें। अरे और तो और, यहां तो जीव की बात लिखी है लेकिन हम कहते हैं किसी पर पदार्थ के प्रति। अरे कभी कभी अपने को ऐसा होता है ना कि अपने को क्या होता है, किसी खंभे से अपना सिर टकरा जाए या ठोकर लग जाए अपने को, तो अपने को उस खंभे पे ही क्रोध आता है। जीव की बात तो छोड़ो, अब खंभे का क्या दोष है, हम देख करके हम नहीं चले, और गुस्सा किस पे आया? खंभे पे गुस्सा आ गया। वहां विचार करो ये खंभा क्या है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, एक एक परमाणु स्वतंत्र परिणमन कर रहा है। उसको आप इस द्रव्य की दृष्टि से देखोगे, किसी भी जीव को द्रव्य की दृष्टि से देखोगे, कोई भी कितना विरोध करने वाला, गुरुदेव श्री का तो कितना विरोध लोग करते थे, तो गुरुदेव क्या कहते थे, भूला हुआ परंतु है तो भगवान। मैंने उसको भी वो किस नजर से देखते थे, कि उसको भी वो भगवान की नजर से देखते थे। तो जब भगवान की नजर से देखते थे तो उनकी करुणा और उनका साम्य भाव अपन लोगों ने देखा कि कभी किसी जीव के प्रति क्रोध का परिणाम नहीं है ना। ये यहां पे कह रहे हैं तो ऐसा यथा योग्य क्यों न जाना, अर्थात ऐसा जानना चाहिए था, यह भी पुनः परिभ्रमण करने से विरत बनाता है। अब देखो यहां पे जो अपना तीसरा पैरा आज लेते हैं अपन, और स्मरण होता है। अभी क्या एक बहुत गजब की बात, अपन क्या सोचते हैं भाई साहब इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसके बिना तो मेरा जीवन चल नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर वो कृपालु देव इसका बहुत सुंदर विवेचन कर रहे हैं कि अपनी भ्रांतियां कितनी गजब की है। देखो यहां बहुत बढ़िया लिखा, और स्मरण होता है कि जिनके बिना एक पल भी मैं न जी सकूं, ऐसे कितने ही पदार्थ मैंने स्त्री आदि उनका उनको अनंत बार छोड़ते, उनका वियोग होते हुए अनंत काल भी हो गया, तथापि उनके बिना जीवित रहा गया। क्या मतलब, अपन ने क्या माना कि इस पदार्थ के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैंने कोई स्त्री मैंने जो भी अपने प्रिय में प्रिय पदार्थ हो वो लगा लेना, उसमें एक उदाहरण दिया स्त्री आदि का तो कोष्टक में, लेकिन जो भी अपने को प्रिय लगते हो और जिनमें अपने को ये भ्रांति होती हो कि इनके बिना मैं नहीं जी सकता, तो दो प्रसंग बने कि या तो हम उन पदार्थों को छोड़ करके चल दिए और हम उसके बाद भी जीवित रहे, और या वे पदार्थ हमें छोड़ करके चल दिए। दोनों बातें हुई ना, दो बातें हुई कि या तो वे पदार्थ हमें छोड़ करके चल दिए। भाई नक्की है, देखो एक बात समझो कि अपने कार्तिकेयन परीक्षा में एक बहुत अच्छी बात आती है कि बालक का जन्म होता है तो बालक माता ये पता करे कि ये लड़का है कि लड़की है, गुरुदेव श्री के प्रवचन माता ऐसा, तो उसके पहले तो अनित्यता उसे अपनी गोद में ले लेती है। क्या मतलब कि एक एक क्षण वो मृत्यु के निकट जा रहा है, जितनी आयु लेकर के आया उसमें एक क्षण बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि जितने समय निकल रहे हैं अपन लोग मृत्यु के निकट 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 और निकट होते जा रहे हैं। किसी भी पदार्थ की दो प्रकार की परिस्थितियां अपने जीवन में बनती है कि या तो उन पदार्थों को छोड़ करके हम चल देते हैं, और हम चल देते हैं तो भी अगले जन्म में अपन जीवित है। देखो अपन लोगों ने पिछले अनंत भवों में, अपन तो ये विचार करें ना, पिछले अनंत भवों की बात चली नहीं, यहां तो कि पिछले अनंत भवों में अपने को अनंत अनंत पदार्थों का संयोग हुआ, माता पिता का संयोग हुआ, पुत्र का संयोग हुआ, स्त्री का संयोग हुआ, भाई बंधुओं का संयोग हुआ, संपत्ति का संयोग हुआ, बहुत बहुत प्रकार के पदार्थों का संयोग अपने को हुआ, और जिस समय उन पदार्थों का संयोग अपने को हुआ था उस समय अपन ने अपने मन में ये कल्पना करी थी, अपने मन में इस भ्रांति का सेवन किया था कि यदि ये नहीं हो तो मैं जीवित नहीं रह सकता, इनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। हुआ क्या भाई साहब, हम लोग वहां से अपनी आयु पूर्ण करके देह का त्याग करके आ गए और दूसरी जगह अपन ने जन्म ले लिया। यानी अपना जीवन चालू रहा कि नहीं रहा, उन पदार्थ जिन पदार्थों के संबंध में हमने ये भ्रांति की थी कि इनके बिना मेरा जीवन नहीं है, उन पदार्थों को हम छोड़ करके आ गए और उसके बाद भी हम जीवित रहे, अर्थात हमारा जीवन चलता रहा। अभी अपन विचार करें ना, तो अगर पिछले जन्मों के कितने कितने जन्मों के कितने कितने प्रोजेक्ट हमारे आधे अधूरे चल रहे होंगे, बहुत से पूरे भी हो गए होंगे, बहुत से लोग अपने अपने पुराने नाम के पिछले भवों के नाम की तख्तियां लगा करके घूम रहे होंगे, और बहुत से लोग अपने को गालियां दे रहे होंगे कि खुद मर गया और हमारे जीव को ये जंजाल छोड़ गया। ये नहीं हो रहा होगा क्या ऐसा? बोलो। तो ऐसा भी हुआ कि वो हम छोड़ करके आ गए और फिर भी हम जीवित हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो उस समय ये भ्रम सेवन किया था कि मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकता, तो वहां से जीवन पूरा कर दिया। एक तो यह परिस्थिति, दूसरी यह परिस्थिति कि वे पदार्थ हमें छोड़ के चले गए। जिस स्त्री के पीछे, जिस पुत्र के पीछे, जिस संपत्ति के पीछे अपन लोग ये मान के चलते हैं कि इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, वो स्त्री अपने को छोड़ करके चल दे तो उसके साथ जीवन थोड़ी चला जाता है किसी का। पुत्र छोड़ करके चल दे, ठीक है, हो सकता है 10-5 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना शोक रहे, लेकिन उसके बाद जीवन तो उसी ढर्रे पे चलता है ना, है ना। अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां बाहर में बने कि जिनके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, और उसके चले जाने पर भी, उनके चले जाने पर भी, उनको एक बार नहीं, और यह परिस्थिति एक बार नहीं हुई, फिर क्या करें, अनंत बार छोड़ते हुए कि चलो एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, फिर उसी गलती को दोबारा, उसी गलती को फिर दोबारा, नक्की नहीं करते, विचार नहीं करते कि अरे जो मैंने आज तक यह माना कि इनके बिना मेरा जीवन नहीं, तो मैं छोड़ के चल दिया तो भी मेरा जीवन रहा, और वे छोड़ के चल दिए तो भी मेरा जीवन रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि मैंने उस समय जो ये भ्रम पाला था कि इनके बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा, वो मेरा भ्रम निरर्थक था। इसका मतलब क्या कि मेरा जीवन किसी पर की सत्ता के अवलंबन से नहीं है, मेरा जीवन मेरे चैतन्य प्राण से मैं जीता हूं, किसी पर पदार्थ के अवलंबन से मैं जीता नहीं और पर पदार्थ के अवलंबन से मैं मरता नहीं। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया, कि अनंत बार छोड़ते हुए एक बात, और उनका वियोग हुए अनंत काल भी हो गया। मैंने हमने छोड़ा, यानी हम छोड़ के चल दिए, या उनने छोड़ा, मैंने वो छोड़ के चल दिए, और उसमें भी कितना कि अनंत काल भी हो गया। तो जिस समय ऐसा प्रीति भाव किया था, क्या किया था, प्रीति भाव, है ना, कि वो प्रीति भाव किया था, उस समय वह कल्पित था, माने केवल वो हमारी मान्यता थी, हमने केवल ऐसी कल्पना की थी, सचमुच में उस कल्पना का कोई आधार नहीं था। क्यों? कि अगर वो कल्पना तब सत्य कहलाती, तब वो वास्तविकता कहलाती कि जिन पदार्थों के बिना मैं नहीं जीऊंगा, हमने ये माना तो हम उन पदार्थों को छोड़ करके चलते ही हमारा जीवन खत्म हो जाता, मतलब हम दूसरी पर्याय में भी नहीं जाते, अथवा वे पदार्थ गए और उनके साथ ही हमारा जीवन चला जाता, तब तो हम ये मानते। लेकिन कहते हैं कि ऐसा तो हुआ नहीं, इसलिए क्या हुआ कि यह सब कुछ कल्पित था, मैंने तेरी अज्ञानमय मान्यता के अलावा इसमें कोई दम नहीं था इस बात में, कल्पना से तो कुछ ही मान ले, अर्थात ऐसा। तो फिर अब क्या करें, यह तो हुआ तो अब क्या करें, इसमें यह हुआ है ठीक है, लेकिन अब करें क्या। तो फिर यहां पे एक विचार का बिंदु अपने को दिया, और वह विचार का बिंदु दिया, ऐसा प्रीति भाव क्यों हुआ, क्यों हुआ, यह पुनः पुनः वैराग्य देता है। बार बार अगर इस बात का विचार करेगा, अरे मैंने ऐसा माना लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, मैंने ऐसा माना मेरे से हुआ नहीं, इसका मतलब कि मेरा यह प्रीतिभाव बेकार। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा अगर हम निर्णय करें ना तो पर पदार्थ के प्रीति भाव से हमें वैराग्य आएगा। किसी संयोग के आधार पे मेरा जीवन नहीं है। जब संयोग के आधार पे मेरा जीवन नहीं है, यानी या तो हम छोड़ चलें या वे छोड़ चलें, है ना, तन धन को साथी समझा था पर वे भी छोड़ चले जाते, तो क्यों चले जाते? कि तुमसे पूछ के नहीं आए थे इसलिए चले जाते हैं, है ना, तुमसे पूछ के नहीं आए ना। पंडित टोडरमल जी ने एक दृष्टांत दिया बहुत अच्छा, कि एक पागल, दृष्टांत है पंडित जी का दृष्टांत, अपन तो कह भी नहीं सके ऐसी भाषा, कड़क भाषा। पंडित जी ने दृष्टांत दिया कि एक पागल कहीं बैठा हुआ था नदी के किनारे, कोई पागल बैठा हुआ, और नदी के किनारे पागल बैठा तो उधर से एक राजा की सवारी आई। अब राजा की सवारी आई तो राजा ने नदी देखी और खूब लाव लश्कर, है ना, तो शाही सवारी हो तो, अब लाव लश्कर तो खूब, राजा ने कहा कि चलो 4-5 घंटे अब यहीं विश्राम करेंगे, 10 बजे आके आराम से भोजन करो, अपने तंबू डेरा सब लगाओ और भोजन करने के बाद सब विश्राम करो, अब शाम को यहां से गमन करेंगे। अब क्या हुआ कि जब वो सब तंबू डेरा लगने लगे, वो सारा वो ठाट बार जमने लगा, तो वो पागल क्या कहता है, वाह हर्षित हो रहा है, वाह वाह, मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा। और जैसे ही 4-5 बजे उनका टाइम हुआ और वे जाने लगे, अब जाने लगे तो वो कहता है, कहां जाते हो? तू कौन होता है पूछने वाला, कहां जाते हो, ये तू पूछने वाला होता कौन है? क्यों? कि भाई हम तुमसे पूछ के आए थे, तुमसे पूछ करके रहे थे, जब तुमसे पूछकर आए नहीं, तुमसे पूछकर रहे नहीं, तो तुमसे पूछकर जाएंगे, ये भ्रम तुमने कैसे पाल लिया? ये उस पागल की बात नहीं है, ये अपन लोगों की बात है। अपन लोग इस मनुष्य पर्याय में आए, सोचो जरा, अपन लोग इस मनुष्य पर्याय में आए, मनुष्य पर्याय में आकर के ये सारे ठाट बाट ताम झाम जो भी अपन ने देखा, संयोग, अच्छे संयोग बुरे संयोग जैसे भी जिसको जो मिला हो, है ना, और उसमें अपन अपनापन मान के, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, इसके बिना मेरा नहीं चलेगा, इसके बिना मेरा, प्रीति भाव करके पागल। अरे इतना प्रीति भाव तो उसके आगे अपन ने अपने आत्महित को भुला दिया। क्यों? क्योंकि देखो ये तो नक्की है ना कि जो संयोग आया तो जब उसकी आने की डेट नक्की है, आया है ना, तो आया है तो उसके साथ ही उसके जाने की डेट नक्की है। मेडिकल की दवाइयां होती है ना, उनमें 2 डेट लिखी रहती है, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है ना। अपने को मैन्युफैक्चरिंग डेट तो ख्याल में आती है, हाँ ये आज आया, ये आया, ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, है ना, ये सब स्त्री पुत्र धन धान्य वगैरह सब ये मिले, तो उनकी आने की डेट तो अपने को ख्याल में आती है और उसमें महर्षित होते हैं। लेकिन भाई साहब एक बात और ध्यान रखना कि जैसे उनके आने की डेट है वैसे ही उनके जाने की डेट भी है, और जिस समय उनके जाने की डेट आएगी, इंद्र अहमिंद्र और जिनेंद्र भी मिलकर के उन संयोगों को रोक नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो फिर उनके प्रति प्रीति भाव क्यों करना, सहज भाव से ज्ञाता दष्टा क्यों नहीं रहना? वो प्रीति भाव कि जिस प्रीति भाव की कोई धरती नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, अपनी भाषा में कहें तो उससे क्या फायदा हुआ? अगर ये हम विचार करें तो क्या होता है कि ये पुनः पुनः वैराग्य देता है। अर्थात अभी हम आगे ऐसा प्रीति भाव नहीं करें, ऐसी प्रेरणा अपने को देता है। ठीक है, जो भी संयोग आया, जो भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट पदार्थों का संयोग हुआ, वो एकमात्र ज्ञान का ध्येय है, मेरे लिए हितकर नहीं, मेरे लिए अहितकर नहीं, इनके बिना मेरा जीवन नहीं, और ये नहीं रहेंगे तो मेरा मरण नहीं, ये होमे तो ठीक, ये नहीं होमे तो ठीक। इस तरह उनके प्रति प्रीति भाव का विसर्जन करने रूप वैराग्य की प्रेरणा अपने को देता है। ये बात करी उन्होंने प्रीति भाव की। अब बहुत से पदार्थ ऐसे भी होते, सभी तरह के थोड़ी होते हैं, बहुत से पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि इनकी तो मैं शक्ल नहीं देखूं, है ना। जैसे अगर इसका बस चले ना, तो जिन पदार्थों के प्रति इसे द्वेष होता है ना, इसका बस चले तो अलोकाकाश में भी नहीं रहने देंगे इनको, लोकाकाश की बात तो छोड़ो, अलोकाकाश में भी नहीं रहने दे, लेकिन होता कुछ नहीं है। जगत के सब द्रव्य अपनी अपनी अवस्था से परिणमते हैं। अपने अज्ञान से हमने उसमें बुरेपने की कल्पना करके अनिष्ट की कल्पना की है ना। उस पदार्थ में कहां लिखा है कि वो अनिष्ट है? देखो ये यहां पे लिखा बहुत अच्छा है, एक 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 बिंदु बहुत जोरदार के है इसमें। देखो देखो क्या कहते हैं, और जिसका मुख किसी काल में भी न देखूं। संसार चक्र है भाई साहब, प्रथमान योग पढ़ोगे ना तो ऐसा ऐसा आएगा कि राजा श्रेणिक का जीव और उसके पूर्व भव का शत्रु उसके यहां पुत्र रूप में जन्म लिया जिसका नाम था कुणिक, और जिस समय उसका जन्म हुआ तो रानी चेलना को ऐसा दोहला उत्पन्न हुआ कि राजा सैनिक के हृदय का रक्त पीऊं। तो रानी चेलना ने यह जान लिया कि यह पुत्र मेरे पति का घातक होगा, तो उसने उसको कूड़े के ढेर में डलवा दिया। ये गुरुदेव के प्रवचन में आता है उदाहरण। कूड़े के ढेर में डलवाने के बाद राजा सैनिक ने पूछा कि बालक कहां है, तो रानी चेलना ने सारी हकीकत बताई। राजा उसको पुत्र प्रेमवश कुछ कचरे के ढेर में से उठा करके लाए, और उसको कचरे के ढेर में डाला था ना, एक घाव हो गया था और घाव में मवाद भर गया था, तो अपने मुख से चूस करके राजा सैनिक ने वो मवाद बाहर किया और रानी को ले जा करके वापस बेटे को दिया। कालांतर में वही पुत्र राजा सैनिक को कैद खाने में डाल दिया, उसने बहुत प्रताड़ना दी और राज्य का अधिकारी बन बैठा। रानी चेलना ने एक बार उसे कहा कि अरे जिस पिता को तूने इतना दारुण दुख दिया है, तुझे पता है कि तेरे पिता ने बचपन की सारी घटना उसको सुनाई, सुनाने के बाद एकदम उस कुणिक को पश्चाताप हुआ, और पश्चाताप हुआ तो वो राजा सैनिक को जेल से छुड़ाने के लिए गया कि मैं राजा पिता को जेल में से वापस निकालूं, और उधर राजा सैनिक ने जैसे उसे देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि ये मुझे और पीड़ा देने के लिए आया है, क्षणिक समय दृष्टि है, अगले भाव में नरक से निकल करके प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन हीरा चूस करके आत्महत्या कर ली। ये संसार का स्वरूप, जिसका मुख किसी समय नहीं देखूं उसके घर में खुद पुत्र रूप में जन्म हो जाए या वो अपने यहां पर पुत्र रूप में जन्म ले लेवे, ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण आपको प्रथमान योग में भरे पड़े मिलेंगे। क्या करें अपन, ये संसार चक्र है भाई, है ना। जो आज अपनी माता है अगले भव में वो बहन हो जाती है, अगले भव में वो पत्नी हो जाती है, अगले भव में वो कैसे क्या हो जाती है। जो अपना पिता है अगले भव में वही अपने पुत्र रूप में जन्म ले लेता है। ये सारे उदाहरण प्रथमान योग में भरे पड़े हैं। जो अपने को संसार की इस विचित्र लीला को दिखाते हुए अपने चित्त में वैराग्य का संचार करते हैं कि भैया इनमें कुछ भी प्रसन्न होने जैसा नहीं है, क्योंकि ये संसार दशा के स्वांग हैं, है ना। अपन तो बहुरूपी से गए भी थे, बहुरूपिया होता है ना, तो अनेक प्रकार के रूप धारण करता है, अनेक प्रकार के, कभी किसका रूप, कभी किसका रूप, कभी भिखारी का रूप बना करके आएगा, कभी राजा का रूप बना करके आएगा, कभी इनकम टैक्स अधिकारी का रूप बना, कभी किसका रूप बना करके आएगा। लेकिन आश्चर्य ये कि अनेक रूप बनाता है लेकिन अपने को अनेक रूपिया नहीं मानता, बहु रूपिया नहीं मानता, अपने को एक रूप मानता है, मैं तो ये हूं। और अपनी हालत क्या है, अपने को तो जो रूप मिले इस मनुष्य पर्याय में भी, जो रूप अपने को मिले, कोई अपने को पिता कहता है, कोई अपने को बेटा कहता है, कोई अपने को कुछ कहता है, कोई अपने को कुछ कहता है, और अपन उस रूप ही अपने को अनुभव करते हैं। ये अपनी विचित्र स्थिति है, पर्याय बुद्धि की कैसी परिस्थिति अपने जीवन में बनी है वो यहां पे देखो कह रहे हैं। यहां पे क्या कह रहे हैं देखो, और जिसका मुख किसी काल में भी न देखूं। ओहो, क्या संसार की विचित्रता है। जिसे किसी काल में मैं ग्रहण ही ना करूं, किसी काल में ग्रहण नहीं करूं, तेरे मेरी आज से कट्टी, आज के बाद तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा बोल देते ना, कभी तेरा सकल नहीं देखूंगा, ऐसा अपन कोल करार कर लेते हैं। कहते उसके घर पुत्र रूप में, उसके घर, ये सब में लगा लेना, उसके घर स्त्री रूप में, उसके घर दास रूप में, उसके घर दासी रूप में, नाना जंतु के रूप में क्यों जन्मा, है ना। अरे हो सकता है कि जिस घर के व्यक्ति के प्रति अपने को द्वेष हुआ हो, है ना, उसी घर में पुत्र रूप में जन्म ले लेवे, उसी घर में पुत्री रूप में जन्म ले लेवे, अगले भव में मर करके उसी घर में दास दासी रूप में जन्म ले लेवे। अरे और तो और, कभी अगले जन्म में मर करके कबूतर होवे ना, तो भी उसी घर में बार बार जावे, ऐसा भी प्रसंग प्रथमान योग में मिलता है। सैकड़ों प्रसंग ऐसे आपको मिलते हैं, प्रथमान योग पढ़ोगे ना उसमें सैकड़ों प्रसंग ऐसे मिलते हैं। क्या है ये सब? इसका मतलब क्या हुआ कि जिस समय तुमने ये उसके प्रति अप्रीति भाव किया था, उस अप्रीति भाव में दम क्या था? इसका मुख कभी नहीं देखूं कि उसी के यहां बेटे के रूप में जन्म ले लिया, अभी क्या करोगे, अब उसी का मुख देखते रहोगे। और उस देखो वो जिसके संबंध में हमने ये बैर भाव किया, ध्यान से समझना कि जिसके संबंध में हमने ये बैर भाव किया, अभी वो व्यक्ति उसी पर्याय में है जिसके संबंध में हमने कहा ना तेरा मुख नहीं देखूंगा, और हम अपन मान लो देव परिवर्तन करके चले गए और उसी व्यक्ति के यहां पुत्र रूप में जन्म ले लिया, हुआ क्या था, इसका मुख मैं कभी नहीं देखूंगा, और अब क्या हुआ कि उसी का मुख देख करके रहेगा 24 घंटे। बोलो भी क्या करेंगे, ये संसार की विचित्रता है भाई साहब। कभी कभी प्रथमान योग के कितने सटीक उदाहरण अपने इस प्रकार के प्रसंगों में अपने को मिलते हैं। जिस रावण के प्रति और सीता और रावण का जो वृत्तांत अपन प्रथमान योग में पढ़ते हैं, और कभी कभी विचार आता है कि देखो सीता जी और रावण उनका जो योग बना, जो भी परिस्थिति, जो भी परिणाम, जो भी कुछ हुआ, रावण नरक में गया, सीता जी स्वर्ग में गई, और सीता जी को क्या विकल्प आया कि लक्ष्मण के जीव को और रावण के जीव को सम्य दर्शन प्राप्त कराऊं, उनको वहां से निकाल दूं। निकाल नहीं सकते, गए, उपदेश दिया। आज जिन सीता जी के अपहरण के दोष में मुनि सुब्रत नाथ के जमाने से आज तक लोग रावण का पुतला फूंक रहे हैं, माने उनकी तो मित्रता हो गई, किनकी, सीता जी के जीव की और रावण के जीव की, वो तो उनको संबोधन करने के लिए नरक में चला गया, और हम लोग आज भी क्या कर रहे, आज भी उनके नाम पर इतनी कसाई का पोषण कर रहे हैं, है ना, रावण के पुतले आज भी लोग जला रहे हैं। और तो और, इधर रावण का जीव तीर्थंकर होगा और इधर वही सीता का जीव उनका गणधर होगा। अब बोलो क्या विचित्रता है, एक भाव में कैसा स्वांग, दूसरे भाव में कैसा स्वांग, और तीसरे भाव में फिर कैसा स्वांग, नक्की तो करो अभी क्या संसार में किसके प्रति तो द्वेष करे और किसके प्रति राग करे, नहीं आएगा वैराग्य, नहीं आएगा विचार, क्या करें हम मन इसे, क्या देखो क्या गजब की बात है कि जंतु के रूप में क्यों जन्मा, अर्थात ऐसे द्वेष से ऐसे रूप में जन्म लेना पड़ा, ऐसे द्वेष से ऐसे रूप में जन्म लेना पड़ा। भाई प्रकृति के पास हमारी मनमानी थोड़ी चलेगी, हमने कह दिया कि मैं तुम्हारी सकल नहीं देखूंगा, तो प्रकृति के पास ये व्यवस्था थोड़ी कि तुमने कह दिया कि मैं सकल नहीं देखूंगा तो तुम्हें उसका संबंध अनंत काल तक कराएगी नहीं। ये प्रकृति का कैसा एक संयोग है कि हमने कहा कि मैं इसकी सकल नहीं देखूंगा कि बेटा जा तू इसी की सकल देखेगा अब, और उसी के यहां जन्म हो गया। क्या है ये सब, वो यहां पर कह रहे हैं कि देखो ऐसे रूप में जन्म लेना पड़ा और वैसा करने की इच्छा तो न थी, ठीक है, ऐसी इच्छा है, ऐसा करने की इच्छा तो नहीं थी भैया, लेकिन हुआ। ये संसार भावना का स्वरूप है। 12 प्रकार की भावनाओं में जो अपने यहां पे संसार भावना आती है ना, ये संसार भावना का स्वरूप है। क्या क्या संसार के विचित्रताएं होती है, प्रथमान योग में होता है ना, पुण्य पाप की विचित्रता, पुण्य पाप का फल संसार की विचित्रता, तीन बातें होती है प्रथमान योग में, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति। देखो, संसार की विचित्रता को आप नहीं रोक सकते, संसार में पुण्य पाप के फल को आप नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि जिस तरह के परिणाम किए उसका फल तो प्रकृति में सामने आएगा। संसार इन्हीं विचित्रताओं से भरा हुआ है, अगर इस तरह की विचित्रता नहीं होती तो यह संसार किसका नाम है, यह तो विचित्रता तो रहेगी ना। तो हम संसार की इन विचित्रताओं को बदल सकते हैं, ना तो हम पुण्य पाप के फलों को बदल सकते हैं। पाप का उदय है, हम पुण्य के उदय में नहीं परिवर्तित कर सकते, पुण्य का उदय है, हम पाप के उदय में नहीं परिवर्तित कर सकते, ना अपने उदय को और ना जगत के किसी दूसरे जीवों के उदय को। हां, एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि संसार की विचित्रता जानकर संसार से उदासीन परिणाम, पुण्य पाप के फल को जानकर पुण्य पाप के फल से विरक्ति, ये महंत पुरुषों की प्रवृत्ति है। महंत पुरुष संसार की विचित्रता को जानकर कभी संसार के प्रति आकर्षित नहीं होते, कभी उन्होंने स्वर्ग का वैभव मिला तो भी हर्षित नहीं होते, और कदाचित पूर्व पाप के उदय से सम्यक दर्शन के बाद भी पूर्व में आयु कर्म बंध गया हो और नरक गति में जाकर के कोई ज्ञानी धर्मात्मा पहुंच जाए, तो नरक गति में पहुंच जाए वहां खेद खिन्न नहीं होते, स्वर्ग गति में चले जाए वहां प्रसन्न नहीं होते। तो क्या होता है कि वो जानते हैं कि ये तो संसार दशा के स्वांग हैं, इनसे मेरा कुछ भी भला बुरा होने वाला नहीं है, ये तो पुण्य और पाप के नाटक हैं, ये पुण्य और पाप के नाटक से मैं तो रंच मात्र भी प्रभावित होने वाला नहीं हूं। इस तरह संसार की विचित्रता को जानकर संसार के प्रति आकर्षित नहीं होकर संसार से वैराग्य लाते हैं, और पुण्य पाप के फलों को जानकर पुण्य के फल में हर्षित नहीं होते और पाप के फल में खेद खिन्न नहीं होते। वो जानते हैं कि अभी पुण्य का फल है, पुण्य के फल के पीछे पाप का फल और पाप के फल के पीछे पुण्य का फल, ये निरंतर चक्र चला करता है। क्यों? क्योंकि हमको क्षण क्षण ये परिणाम चलते हैं, क्षण में अशुभ और क्षण में शुभ, क्षण में अशुभ और क्षण में शुभ। देखो, जब तक सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं होगी, जब तक आत्म स्वभाव के अवलंबन से धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इन दो परिणामों का चक्र हमारे जीवन में चलेगा। कौन कौन से परिणामों का चक्र चलेगा? कि शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, ये चक्र चलेगा। और जब ये चक्र चलेगा तो इन चक्र के कारण से बंधने वाले पुण्य और पाप कर्म बनेंगे, और जब ये पुण्य और पाप कर्म बनेंगे तो इन पुण्य और पाप कर्म का उदय आएगा, तो पुण्य कर्म का उदय आएगा तो लोक में प्रसिद्धि, बाहर में संपत्ति है ना, और वो सब अनुकूलताओं के ढेर मिलेंगे, और पाप का उदय आएगा तो अच्छा काम करते हुए भी लोक में निंदा और बाहर में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी। ये सब तो पुण्य पाप के नाटक हैं। ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं? कि पुण्य का उदय आवे तो हर्षित नहीं होते, पाप का उदय आवे तो खेद खिन्न नहीं होते, जानते हैं कि ये तो आघाती कर्म के उदय में प्राप्त हुआ संयोगों का नाटक है। नाटक का मतलब होता है ना माने नहीं, टक माने टिकने वाला, कि जो टिकने वाला नहीं है उसका नाम नाटक है, और मैं तो इस नाटक से पार एक टिकाऊ तत्व तो भगवान आत्मा हूं, जो पुण्य के उदय में कितना भी अनुकूल संयोग मिला और पाप के उदय में कैसी भी नरक की भीषण ज्वाला मिली, पाप के उदय में शरीर के खंड खंड हुए मेरे टुकड़े नहीं हुए, और पुण्य के उदय में देवों ने आकर के मेरी पूजा की, मेरा उससे कुछ भला नहीं हुआ। इस तरह पुण्य और पाप के उदय में उदासीन वर्तते हुए महंत पुरुषों की प्रवृत्ति जो है कि एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव का अवलंबन लेकर इन सब स्वांगों को जानते हैं, ये काम वो करते हैं। वो यहां पे अपने को कृपालु देव कहते हैं कि देखो और वैसा करने की इच्छा तो नहीं थी, कहिए यह स्मरण होने पर उस क्लेशित आत्मा के प्रति जिगुप्सा नहीं आती होगी। करे ऐसा किया मैंने, ऐसा किया क्या मतलब इसका? देखो ये प्रश्न मार्क डाले ना, विचार करो, नहीं आते, ऐसा नहीं आता होगा परिणाम अपने को। अरे ऐसा अगर एक बार भी अंदर से लगे, जैसे होता है ना छोटा बालक हो और छोटा बालक का हाथ आग पे लग जाए एक बार, और एक बार वो जल जाए तो दोबारा, गुरुदेव उदाहरण देते थे बहुत अच्छा उदाहरण योग सार के प्रवचन में आया कि एक वो बेल होता है ना बेल, तो बेल का नाक छिदता है, छिदात नाक छेदते ना, वो डोरी ओरी बांधते हैं उसमें कुछ करते हैं ऐसा कुछ, तो नाक छेदने के लिए लुहार के यहां उसको ले जाते हैं, उसके नाक पर लोहे का गर्म सरिया लगा करके उसके नाक को छेदते हैं। मतलब उसको इतनी पीड़ा होती है कि जिस पीड़ा का कोई मुकाबला नहीं है ना। तो एक बार बेल का ऐसा नाक छिदा, और छिदने के बाद भाई साहब वो बेल मालिक का बेल खो गया। अब खो गया तो उसने कहा कि हो सकता है कल अपन ने लुहार के यहां उस बेल की नाक छिदी थी, तो हो सकता है कि उस लुहार के यहां बेल चला गया हो, तो लुहार के पास आया हो, लुहार के पास आया कि भैया हमने जिस बेल की कल तुम्हारे यहां नाक छिदाई थी कि वो बेल खो गया है, तो कहीं तुम्हारे यहां तो नहीं आया? कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो, बेल और मेरे यहां, कि तुमको पता नहीं कि उसने कितनी पीड़ा भोगी है, नाक छिदने में कितनी पीड़ा होती है, ऐसे पीड़ा के स्थान में वो दोबारा आएगा? अरे उधर से निकलेगा भी नहीं, है ना। इसी तरह अपने को अगर ये लगे कि इन प्रीति रूप परिणामों में, इन अप्रीति रूप परिणामों में आत्मा ने इतनी पीड़ा सहन की है, इतने भव भ्रमण का क्लेश सहन किया है, आचार्य कहते हैं, ज्ञापे कृपालु देव कहते हैं कि उन परिणाम ऐसा अगर तुझे लगे तो फिर क्या स्थिति होगी, जरा विचार करो, क्या आएगा इन परिणामों में फिर से आएगा दोबारा? है ना, ये यहां पे कह रहे हैं, अर्थात आती जिगुप्सा नहीं आती होगी, अर्थात क्लेशित आत्मा के प्रति, कैसा आत्मा, इसके प्रति तुझे जिगुप्सा नहीं आती होगी, अवश्य आती ही है, है ना। ये कहा, अधिक क्या कहना, अधिक क्या कहना, देखो बहुत अच्छा लिया है, अधिक क्या कहना, जो जो पूर्व के भवांतर में, पूर्व के भवांतर अनादिकाल में, जो कल चर्चा आई थी ना कितने कितने भव, कितने कितने भव, एक समय भी अनादि से लेकर आज तक भव के बिना नहीं रहा, उसकी बहुत चर्चा अपन कल कर चुके थे कि ऐसे पूर्व में भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, काय के कारण भ्रमण किया, कि भव का भ्रमण करने का एकमात्र कारण, भव में भ्रमण करने का एकमात्र कारण भ्रांति, जिसके लिए एक दोहा आया है, क्या लिखा, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। एक दोहे में कितनी बात कर दी, क्या कह दिया, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, आत्मा को आत्मा के संबंध में भ्रांति रही, है ना, आत्मा को आत्मा के संबंध में भ्रांति रही, है ना, खुद आत्मा होने पर भी यह कहता है मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, मुझे आत्मा समझ में नहीं आता, मैं मुझे आत्मा दिखाई नहीं देता। अरे तुझे आत्मा दिखाई नहीं देता, तुझे आत्मा जानने में, पंडित दीपचंद जी ने तो बहुत बढ़िया लिखा, उन्होंने कहा तुझे ऐसा कहते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती, सब देखता है और कहता है मुझे दिखाई नहीं देता। अच्छा मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, चलो थोड़ी देर के लिए माना कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आता, ये किसे जानने में आता है भैया जरा बताना, ये किसी भ्रांति है। जैसे किसी आदमी को भ्रांति हो जाए, क्या भ्रांति हो जाए, स्वप्न आवे और सपने में भ्रांति हो जाए कि भाई मैं तो मर गया, अपने मरने की भ्रांति, मरने का सपना देख सकते, नहीं देख सकते, देख सकते ना, अपने मरने का सपना देखा, अभी अपने मरने का सपना देखा, अब उसको जीवित होने के लिए क्या करना, कि केवल जागना है। क्यों? क्योंकि तू मरा नहीं है, केवल मरने की भ्रांति हुई है। मुझे आत्मा को आत्मा के संबंध में भ्रांति रह गई। और भ्रांति माने क्या? कि अपने को भूल जाना और पर को अपना मानना, इतनी सी भ्रांति है ये। आत और इसके बराबर आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, कि इससे बढ़कर के दुनिया में कोई रोग नहीं है। हां, और आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, इस रोग को मिटाने वाले, इस रोग को मिटाने का उपाय दर्शाने वाले वैद्य कौन हैं? कि सदगुरु, जिन्होंने मार्ग को प्राप्त किया है, वे तेरे रोग को भी जानते हैं और रोग के अभाव का मार्ग भी जानते हैं। और फिर पथ्य क्या है इसका? दवा लेते हैं ना, तो दवा लेते हैं तो पथ्य भी होता है कि नहीं? तो पथ्य क्या है? कि गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, कि गुरु की आज्ञा से बाहर कदम रखेगा भव समुद्र में डूब जाएगा। आया कि नहीं? वचनामत में बोला है ना, गुरु की आज्ञा से बाहर यदि पैर देगा, क्या मतलब? कि तू खुद मार्ग जानता नहीं और मार्ग जानने वाले की आज्ञा का अनुपालन नहीं करेगा, उनकी आज्ञा से बाहर पैर देने का मतलब क्या? कि उनकी आज्ञा से बाहर पैर देने का मतलब यह कि अपनी मति कल्पना से मार्ग को प्राप्त करने की चेष्टा, ये हो गया ना, ये उन्मार्ग हो गया। अपनी मति कल्पना से मार्ग को प्राप्त करने की चेष्टा, इसका मतलब क्या? कि अपनी मति कल्पना से मार्ग को प्राप्त करने की चेष्टा में अनंत ज्ञानियों का अवर्णवाद होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानियों ने मार्ग स्पष्ट किया है और हम उस मार्ग की अवगणना करके अपनी मति चेष्टा से मार्ग को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आज तक मार्ग को प्राप्त नहीं हुए। गुरु का गुरु कभी नहीं बनना, हां ये स्वच्छंदता दोष है ना, गुरु का गुरु कभी नहीं बनना। तो यह आया कि गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, और आखिर में उपाय क्या? औषध विचार ध्यान। गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं और औषधि क्या है? कि औषधि दो, कि विचार और ध्यान। क्यों? कि विचार के फल में अनुभव आएगा और अनुभव के मैंने प्रतीति आएगी और प्रतीति के बाद स्वरूप में स्थिर होकर के पूर्ण वितरागता की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। विचार में नहीं आते अभी तो अपन लोग, है ना? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जय करे, आया कि नहीं आया? विचार में तो आवे जीव, अभी तो इतने अपन निशंक हैं कि अपने को रंच मात्र भी अपने को ये शंका नहीं होती। जिस पर्याय में अपन आ गए ना, उस पर्याय में इतने दृढ़ हो गए हैं कि अपने को ये शंका नहीं होती कि भाई इस पर्याय में आए तो ये तो अपन तो अभी तो थोड़े साल पहले आए, 50 साल 55 साल इस पर्याय में, तो उसके पहले कहां थे अपन? इतना विचार कर ले जीव खाली। अपने घर में इतने बड़े बूढ़े थे, वो सब चले गए, अभी वे कहां होंगे? हम भी आए ना, तो हम आए तो इसके पहले हम कहां थे? क्या इसके पहले मेरा अस्तित्व नहीं था? क्या इस पर्याय के चले जाने के बाद, ये पर्याय बिगड़ जाने के बाद मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा? अगर एक बार जीव इसका विचार कर ले तो जिसका अस्तित्व इसके पहले भी था, जिसका अस्तित्व इस समय भी है और जिसका अस्तित्व यह पर्याय विघट जाने के बाद भी रहेगा, वो तत्व मैं हूं। जो मैं हूं वो तो हो गया सोतेला, आत्मा को तो सोतेला बना दिया अपन ने, है ना, और शरीर को मान लिया अपना। क्यों? क्योंकि आत्मा के प्रति अपन सोतेला व्यवहार करते हैं, आत्मा को आत्मा मानकर। अगर जिसको अपन अपना मानेंगे उसके प्रति अर्पणता का परिणाम नहीं आए बिना नहीं रहेगा, और जिसमें अपनापन नहीं होगा उसमें अर्पणता का परिणाम कभी नहीं आ सकता। अभी हम शरीर के प्रति हमारी कितनी अर्पणता, कि 24 घंटे का दिन है, ये तो दिन ही 24 घंटे का है तो करे क्या, 48 घंटे का दिन हो तो भी कम पड़े अपने को तो नहीं। और 24 घंटे में से कितने दिन, कितना टाइम शरीर के लिए देते अपन और कितना टाइम आत्मा के लिए देते हैं, जरा विचार कर लेना भैया, कैलकुलेशन कर लो, थोड़ा सा अपनी गणित लगा लें इसमें अपन, विचार कर लो तो अपने को पता लगेगा कि हमारा आत्मा में अपनापन है कि अपना शरीर में अपनापन है, पर्याय में अपनापन है, वो भी पर्याय भी अनंत द्रव्य आत्मा के मनुष्य शरीर कुछ नहीं है। और एक मिनट लगे यहां से, गुरुदेव बोलते हैं ना कि थोड़े एक मिनट, कि फू होने में टाइम नहीं लगेगा, एक मिनट लगेगा। जिसको विघटने में एक मिनट भी नहीं लगे उसके लिए पूरा जीवन समर्पित, और जो ऐसी अनंत पर्याय विघटने के बाद भी जिसका विघटन कभी आज तक नहीं हुआ, पर्याय विघटी, शरीर आए और गए, संयोग आए और गए, अनेक प्रकार के परिणाम भी आए और गए, लेकिन जो ध्रुव तत्व सुमेरु पर्वत की भांति अडिग और अचल, ऐसा का ऐसा अनादि अनंत रहा है, उसमें अपनापन आवे। बस मूल बात इतनी कहनी यहां पे, ये आया ना, ये यहां पे कहा ना कि भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर अब कैसे जीना। क्या देखो, क्या शब्द देखो आप, कि इतना परिभ्रमण किया तो अब कैसे जीना। क्या ये जीना जीना है क्या ये, कि एक पर्याय धारण करो फिर दूसरी पर्याय धारण करो फिर तीसरी पर्याय धारण करो, कभी इस शरीर में कभी इस शरीर में कभी इस शरीर में, है ना। लोक में देखो, एक उदाहरण देता हूं कि लोक में अपन लोग किराए के मकान में रहते हो, है ना, और किराएदार हम जितने भी मकान मालिक मिले हमें ऐसा मिले कि तीन महीने किसी ने ठहरने नहीं दिया, भले आदमी ने 2 महीने हो भाई साहब खाली करना, मेरे दूसरे रिश्तेदार आ रहे, फिर दूसरा मकान लिया वो भी 1.5 महीने में आ गया, आ धमका भाई साहब खाली करो। अब 10-15 मकान अपने को ऐसा खाली करना पड़े तो अपने को क्या लगता है कि ये कुछ जीना है। अरे हमारा भी एक मकान हो, भाव आता है कि नहीं आता ऐसा। तो इसी तरह ये पर्याय, ये तो कर्मोदय जनित मकान है, किराए की झोपड़ियां हैं, इनमें क्या दम है? किस समय कर्म खाली करा लेगा, आयु कर्म का उदय आया चलो भैया आयु कर्म, फिर दूसरी पर्याय में गए फिर आयु कर्म का उदय आया चलो भैया, फिर तीसरी पर्याय में गए फिर आयु कर्म का उदय आया खत्म हुआ चलो भैया। अरे ये कौन सा नाटक है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अगल में कभी बगल में, कभी सड़े गले शरीर में कभी सुंदर शरीर में, कभी किधर कभी किधर। कपालदेव का ये शब्द देखो, अब कैसे जीना, बहुत गंभीर शब्द है, यह चिंतना हो पड़ी है, है ना। अब ये चिंतना अपने को भी हो पड़े अगर तो बहुत अच्छी बात है, है ना। ज्ञानी कह रहे हैं, धर्मात्मा कह रहे हैं, हमको तो ये चिंतना हो पड़ी है कि ये हमारा जीवन, ये गतियों में भटकना। लोक में तो अपन बोलते हैं ना, बड़े नाक वाले बनते हैं अपन लोग, कहते नाक वाले, कोई अपने कोई अपना अपमान कर दे, अपने घर में कोई आया और अपन कहें अच्छा भाई सब ठीक है अब आप आए अब आप पधारो, तो अपन क्या करते, आज के बाद कभी नहीं जाना। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि अपन लोग इन चार गतियों में गए, चार गतियों में से कौन सी गति अपन ने छोड़ी, कौन सी गति छोड़ी, कौन सी पर्याय, चार गति 84 लाख योनियां, इनमें से एक गति और एक योनि तो बताओ कि जिसमें हम लोग नहीं गए हो, जिसमें हमने शरीर धारण नहीं किया हो, जिसमें हमने जन्म मरण नहीं किया हो, और एक भी गति ने अपने को अपने अपने यहां स्थायी रूप से रखा हो तो बताओ। मनुष्य गति में गए थोड़े दिन रहे, मनुष्य गति कह देगी जाओ, तिरंच गति में गए थोड़े दिन रहे, तिरंच गति कहेगी जाओ, नरक गति में गए थोड़े दिन रहे, नरक गति कहेगी जाओ, देव गति में गए थोड़े दिन रहेंगे, देव गति कहेगी जाओ, है ना। और फिर लौट करके हम जिस गति ने हमको लौटा दिया, जिस गति ने अपने को शाश्वत शरण नहीं दी, जिस गति ने अपने को अनंत काल तक रहने की गारंटी नहीं दी कि मैं अनंत काल तक तुम्हें रखूंगी, ऐसी गारंटी नहीं दी, हम लौट लौट करके उन्हीं गतियों में जाते हैं। और लोक में, लोक में, अरे साहब क्या बात करते हो, उनने मेरा अपमान किया, मैं गया और मुझे लौटा दिया, मैं कभी मर जाऊंगा लेकिन उनके यहां नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते, तो कि एक बार तुझे ऐसा परिणाम इन गतियों के प्रति क्यों नहीं आता है कि इन गतियों ने मुझे लौटाया, धिक्कार है मुझे अगर इन गतियों में दोबारा जाऊं तो, एक बार ऐसा परिणाम क्यों नहीं आता अपने को। अरे एक गति है ना ऐसी कि जो अपने को अनंत काल तक रखेगी, उस गति का नाम है पंचम गति, और उस पंचम गति का पुरुषार्थ यहां से अपन कर सकते हैं, स्वरूप की साधना करके कर सकते हैं। कृपालु देव कहते हैं कि कैसे जीना, हमें तो चिंतना हो पड़ी है। चिंतना का मतलब क्या होता है, बार बार यही कैसा क्या, मतलब एक जैसे होते ना एक झंझनाहट अपने चित्त में खड़ी हो जाए, एक इस तरह की स्थिति अपने हां अंतर में ऐसी हो गई है कि ऐसी चिंतना हो पड़ी है हो पड़ी है, फिर जन्म लेना ही नहीं। अभी इसकी चर्चा तो वैसे कल करेंगे, पढ़ लेते हैं पेरा। फिर जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं, ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है। आया कभी ऐसा भाव, ऐसा दृढ़ता से ऐसा भाव, जन्म लेना ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं, कभी ऐसा भाव आया है? देखो खाली बोलने से नहीं चलेगा काम, हमको भी बुलवा लो स्वामी सिद्धों के दरबार में, है ना। हमने समझा, हमने बोल लिया यार, भगवान ने सुन ली, रो बुला लेंगे, आजा बेटा। ऐसा कभी नहीं होने वाला जब तक हमें परिभ्रमण की चिंता नहीं आई। नियम सार में जब सिद्ध भगवान और भवलीन संसारी की बात की आचार्य देव ने, तो 47 और 48 नंबर की गाथा में कहा, जो संसार से थके चित्त वाले होते हुए, सबसे पहली शर्त है मार्ग की कि तेरा चित्त संसार से थकना चाहिए। वचनामत का पहला बोल पढ़ो, हे जीव तुझे कहीं न रुचता हो तो आत्मा में रुचि लगा, मतलब कहीं नहीं रुचना चाहिए जगत में, यह पहली शर्त। नियम सार में यही बात, थके चित्त वाले होते हुए तेरा चित्त अगर संसार से थक गया हो, क्यों? क्योंकि अगर तू संसार से थका ही नहीं हो और तुझे संसार में मजा आता हो, तो इस मुक्ति के मार्ग की चर्चा वो केवल मात्र चर्चा बनकर के रह जाएगी, है ना। केवल मात्र सच मानना कर्ण इंद्री का विषय बनकर के रह जाएगा, अंतर परिणमन नहीं आएगा। अंतर परिणमन आवे उसके लिए अपने को भव और भव के भाव, बल्कि यह भी एक बात कह के पूरा करता हूं कि अपने को कभी कभी भव और भाव की चर्चा, भव और भय की, भव के भाव की चर्चा चलती है ना, तब अपने को नरक के दुख दुख लगते हैं। गुरुदेव श्री का वचनामत है द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में कि कभी कभी जीव को नरक के दुख का वर्णन सुनकर वैराग्य आ जाता है, लेकिन वो वैराग्य सच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसे नरक के प्रतिकूलता का दुख सुनकर संसार से वैराग्य आया, उसे स्वर्ग की अनुकूलता का सुख सुनकर संसार के प्रति राग आए बिना नहीं रहेगा। तो क्या है तत्व, वस्तु स्थिति क्या है? कि अपने चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से अपने को यह वैराग्य आवे कि भाई ये संसार परिभ्रमण मेरा स्वरूप नहीं है, संसार में रहना ये मेरी दशा नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है, मेरे लिए शोभा की बात नहीं है, मैं थक गया हूं इन गतियों में भटकते भटकते, अब मुझे एक ऐसा विश्राम कि जिस विश्राम के बाद मुझे कभी किसी गति की ओर जाना नहीं पड़े, ऐसी दशा मुझे चाहिए, ऐसा अंतरंग में भाव आवे तो मार्ग की प्राप्ति ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा अंतर में चिंतवना ना आवे और मार्ग मिल जाए, ऐसा भी कभी हो नहीं सकता है। इसलिए अपन इन सब ज्ञानियों के मार्गदर्शन के तले अपन इस बात को बहुत अच्छे से समझें और अपने अंतर परिणमन में ये बात अपन लोग लावें। इसी पवित्र भावना से अभी की चर्चा अपन यहां विराम देते हैं।